अब आपके सामने प्रस्तुत है निर्देशक राजेंद्र नाथ का वक्तव्य घासीराम कोतवाल के संदर्भ में। सबसे पहली चीज जिसने मुझ में घासीराम कोतवाल के बारे में गहरी दिलचस्पी पैदा की वह थी इसमें इंसानी पर्दे का इस्तेमाल, और यह बात तब की है जब मैंने यह नाटक पढ़ा नहीं था, लेकिन जिन दोस्तों ने पढ़ रखा था उन्होंने इसके बारे में कुछ इस तरह से बात की कि मेरा आकर्षण इस नाटक के प्रति बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि जब मैं अनामिका के लिए है वदन प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा था तो मन में एक हल्का सा विचार आया कि है वदन में इंसानी पर्दे का इस्तेमाल करूँ, लेकिन फिर इस प्रलोभन को मन से हटाया यह सोचकर कि वहाँ उसका इस्तेमाल अनुचित होगा। यह बात है जुलाई 1972 की, और तब तक भी घासीराम कोतवाल मैंने पढ़ा नहीं था और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैंने इसे कब प्रस्तुत करूंगा। मार्च 1973 में वसंत देव का यह श्रेष्ठ अनुवाद मुझे मिला। पहली बार पढ़ने पर मेरी अनोखी प्रतिक्रिया हुई। मैं बहुत उत्तेजित था क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस नाटक में एक बहुत अच्छी प्रस्तुति की संभावना है। बहुत डर भी लगा, डर उन समस्याओं के कारण जिनका मैंने उस समय अंदाजा लगाया, व्यय और अभिनेताओं की समस्याएं। यह बात अब स्वीकार कर सकता हूँ, मैंने इस तरह का नाटक पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया था। एक युगीन नाटक जिसमें गाना है, नाच है और कम से कम 30 अभिनेताओं की जरूरत है। आमतौर से ऐसा नाटक सौकिया मंडली की पहुंच से बाहर होता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि सौकिया मंडलियों के लिए इतना धन जुटाना, इतने अभिनेता इकट्ठे करना और अभिनेता भी वे जो गा सकें नाच सकें बहुत मुश्किल काम है। हालांकि वह महत्वपूर्ण बात है कि अब तक इस नाटक की दो प्रस्तुतियां ही हुई हैं, एक मराठी में और एक हिंदी में, और दोनों ही सौकिया मंडलियों के द्वारा। नाटक के मूलभूत गुण ही शायद कारण रहे होंगे जिन्होंने जब्बार पटेल और मुझे यह नाटक प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। यह कथन कि नाटक मंच पर ही पूरी तरह जीवंत होता है घासीराम कोतवाल पर ही पूरी तरह लागू होता है। यह हो सकता है कि एक बार नाटक पढ़ने के बाद इसका सारा अर्थ ठीक ठीक पकड़ में ना आए। ऐसा हो सकता है कि ध्यान नाना और घासीराम के चरित्रों में ही उलझ कर रह जाए और नाटक के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान ही ना जाए। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि कुछ नाटकों में, शायद महत्वपूर्ण सभी नाटकों में, कथा वस्तु सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। इस नाटक में एक अत्याचारी शासक के उत्थान पतन या एक और अत्याचारी शासक के विलासी इतिहास पर जरूरत से ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। वास्तव में इन्हें एक बड़े परिदृश्य के अंशों के रूप में देखना चाहिए। यह बात भी याद रखना चाहिए कि कुछ नाटकों में कथानक नाटककार के लिए ऐसी खूंटियों से ज्यादा महत्व नहीं रखते जिन पर वह कुछ और ही मुद्दे टांगता है। यह बात घासीराम कोतवाल पर भी लागू होती है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी नाटक को एक बार पढ़ने के बाद इसके पूरे महत्व को नहीं पकड़ पाया था, और जो पकड़ पाया तो बार बार पढ़ने और तेंदुलकर के साथ एक बहुत लंबी चर्चा के बाद। यहाँ सारा बल एक पतनशील और विलासप्रिय समाज पर है जो घासीरामों को जन्म देता है और उनकी हत्या भी करता है, और साथ ही तानाशाही को एक दूसरे रूप में सहने के लिए तैयार भी है अगर उसके उल्टे पुल्टे मूल्यों को खरोंच ना लगे। यही बात है जो नाटक को एक बार पढ़ने के बाद शायद पकड़ में ना आए, और यही वह बात है जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए अगर नाटक को समकालीन संदर्भ में सार्थक होना है। यही आधार था जिस पर प्रस्तुति अपने सभी अंगों, संगीत, नृत्य गति तथा वाक्य विन्यास के साथ नियोजित हुई। यह एक युगीन नाटक है सिर्फ इस एक अर्थ में कि इसका समय 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों का पेशवा काल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अर्थ में यह नाटक इस काल से परे का है। इस युग का वातावरण बनाना जरूरी था, पर मैंने बहुत प्रामाणिकता का प्रयत्न जरूरी नहीं समझा। सामान्य तौर पर इस युग को निगाह में रखते हुए HB शर्मा द्वारा वेशभूषा तैयार की गई, लेकिन मैंने वेशभूषा और हाव भावों की बारीकियों में प्रामाणिकता लाने की कोशिश नहीं की। यह संभव है कि जो लोग इस युग के बारे में ज़्यादा जानते हैं अगर वे नाटक को इतिहास के एक पाठ के रूप में देखें तो वे निराश होंगे। ऐसे लोग हमेशा होते हैं, और सच्चाई यह है कि उनमें से कुछ ने नुक्ताचीनी भी की है, परंतु मेरा उद्देश्य नाटक को प्रभावशाली बनाना था, ना कि ऐतिहासिक शुद्धता रखना। यह बात प्रदर्शन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। उदाहरण के लिए संगीत में भी देश काल को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। मैंने मोहन उप्रेती के लोक संगीत के समृद्ध भंडार का सहारा लिया और प्रस्तुति की पूरी संरचना की दृष्टि से उसी का इस्तेमाल किया जो ज्यादा प्रभावशाली और सार्थक था। जब प्रामाणिकता की बात कर रहा हूं तो यही यह बात बता दूं कि प्रस्तुति की पूरी संरचना किसी खास पारंपरिक नाट्य रूप के अंतर्गत नहीं आती। हालांकि नाटक में लोक नाट्य के एक से ज्यादा तत्वों का उपयोग हुआ है, विशेषकर एक अल्प परिचित कोंकणी लोक नाट्य रूप और दशावतार का, परंतु मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया और इस प्रक्रिया में ही चीजें सूझती गई। आज पीछे देखते हुए यह लगता है कि मेरी पृष्ठभूमि और प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए यह निर्णय सही था। इस प्रक्रिया में आलेख से कम एक प्रमुख अंतर आया है जो मुझे फिर इंसानी पर्दे के इस्तेमाल पर ले जाता है। लेकिन इससे पहले दो शब्द दृश्य संबंध के बारे में। दृश्य बंध मुख्यतः व्यवहार प्रधान चाह गया था। यह चारों ओर से ढलान वाला 9x9 का एक चौकोर प्लेटफॉर्म था जो सामने काफी जगह छोड़ते हुए मंच के केंद्र में रखा था। इसमें मुझे दो धरातल और ब्राह्मण मंडली के व्यवहार की विभिन्न संभावनाएं दिखी। हालांकि वैचारिक दृष्टि से यह भी संप्रेषित करने का उद्देश्य था कि यह प्लेटफॉर्म नगर अथवा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र है, पर दृश्य बंध के वास्तविक प्रयोग से शायद यह विचार संप्रेषित नहीं हुआ। तो अब इंसानी पर्दे पर आए। आलेख में यह इंसानी पर्दा बनाने वाले कलाकार कई जगहों पर स्थिर या गतिशील पर्दा बन जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन में इसका इस्तेमाल मूलतः पर्दे के रूप में नहीं बल्कि एक सामूहिक मानवीय उपस्थिति के रूप में हुआ। मेरे विचार में इससे अंततः पूरे पतनशील समाज पर बल देने में मदद मिली, ना कि किसी एक पात्र पर। कुछ जगहों पर जहां आलेख पर्दे के व्यवहार की मांग करता था, मैंने दो धरातलों पर निश्चलता और गति का साथ साथ प्रयोग किया। इससे एक ओर तो प्रपंची और पुनित की सन्निधि को रेखांकित करने में मदद मिली और दूसरी ओर उन उल्टे पुल्टे मूल्यों को उजागर करने में जो तत्कालीन समाज को संचालित करते थे और निःसंदेह आज के समाज को भी करते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि प्रस्तुति में रूप बंध के जो भी परिवर्तन अंततः शामिल किए गए वे तेंदुलकर द्वारा सृजित समृद्ध रूप बंध के आधार के बिना संभव नहीं थे।